الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اگر دنیا چ میں تانوں سوال کروں کہ مشہور لوگوں نو ملن دا بہت سارے لوگوں نو شوق ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آج کل تو صرف ملاقات نہیں کرنی ہوندی، ایک اور تمنا ہوندی ہے کہ ملاقات دے نال سانو تہاڈی سیلفی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. مگر میں اگر ایک سوال تہاڈے نال کروں کہ قیامت دے دن وہ کون سی ہستی ہے جنہاں دے نال تانوں ملن دا سب سے زیادہ شوق ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس سے ملنے کو ہر کوئی چاہتا ہوگا؟ کبھی تسی سوچا کہ قیامت دے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ اس وقت دنیا وچ 8 ارب لوگ رہندے نے، قیامت دے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اس دنیا چ آئے ہوں گے وہ سارے ہی قیامت دے دن ہوں گے نا، پتہ نہیں کتنے ارب لوگ ہوں گے. اچھا اگر میں ایسا بات کروں کہ اس دن سارے مسلمان کس ہستی دے نال ملاقات کا شوق رکھتے ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا سے جس کی ملاقات ہو جائے سبحان اللہ، اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. مگر اربوں لوگوں میں یہ پاسبل کیسے ہوگا؟ اے کیسے ممکن ہوگا کہ اسی سرکار دو عالم علیہ السلام دے قریب بھی ہو جائیں اور انہاں دے نال ملاقات بھی ہو جائے؟ ایک اجتماع وچ ملاقات کرنا ایک بندے نال مشکل ہے، تو ارباں لوگوں وچ کیسے ملاقات ہوگی نبی پاک دے نال؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود ہی اپنے نال ملاقات دا ایک فارمولا سانوں دسیا ہے. حدیث پاک تو انہوں سنان جانا ہوں کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا. ہائے ہائے، کس سے ملاقات ہوگی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام سے، مجھ گناہگار کی. آپ سوچیے کتنا بڑا انعام ہے. آپ کو پتا ہے پیارے آقا کا دیدار ہو جانا بڑی بات ہے، نبی پاک کا قرب مل جانا بڑی بات ہے، ملاقات ہو جانا، میرا جسم انہاں دے مبارک جسم دے نال ٹچ کرے گا، مصافحہ ہو جائے گا. آپ سمجھ دو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. حضرت انس بن مالک سے پوچھئے کہ نبی پاک کسی چیز کو ٹچ کر دیں، پیارے آقا مس کر دیں، وہ کتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک رومال تھا، ایک چادر، دسترخوان. ان کا بڑا عجیب فارمولا تھا، تو کسی کپڑے نو دھونا ہوتا ہے، ماڈرن زمانہ ہے، واشنگ مشین ڈال دینے وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کے پاس بھی بڑی کمال کی واشنگ مشین تھی. وہ اپنے اس کپڑے کو جو میل دور کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ کسی پانی میں یا جناب کسی بالٹی میں نہیں ڈالتے تھے، وہ آگ میں ڈال دیتے تھے. میل جل جاتا تھا، کپڑا صاف ہو کر باہر نکل آتا تھا. لوگوں نے سوال کیا یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا، بڑا ودیا طریقہ ہے. تو وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ نبی پاک کچھ عرصہ پہلے میرے گھر آئے تھے، نبی پاک نے اس رومال کو، اس کپڑے کو ٹچ کیا ہے، جب اسے آقا نے چھوا ہے دنیا کی آگ اس پر اثر نہیں کرتی ہے. مجھے جب بھی صاف کرنا ہوتا ہے میں آگ میں ڈالتا ہوں، آگ میل جلا دیتی ہے، کپڑا بالکل صاف باہر نکل آتا ہے. اب ذرا غور دال سنو کہ جس کپڑے کو پیارے آقا ٹچ کر دیں اسے دنیا کی آگ نہ جلائے، جس امتی کو ٹچ کر دیں اسے دوزخ کی آگ کیسے جلائے؟ آقا سے ملاقات، تو اب نبی پاک سے ملاقات کتنا آسان فارمولا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو مجھ پر 50 واری صرف 50 بار روزانہ درود پاک پڑھ لے کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. اب فضول باتیں کرنے میں پورا دن گزار دیتے ہیں، موبائل فون ہاتھ میں ہو تو گھنٹوں گزار دیتے ہیں، چائے کے ہوٹل پر بیٹھے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے، اتنی فضول باتیں کرنے کا ٹائم ہے. اور ٹائم نہیں تو درود پڑھنے کا ٹائم نہیں، ٹائم نہیں تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، ٹائم نہیں تو تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ हालांकि इतने बड़े बड़े इनाम हमारे लिए रखे गए हैं, छोटे छोटे काम करने पर देखा जाए तो बड़े बड़ी एफर्ट नहीं है, थोड़ी सी देर में हम लाखों करोड़ों नेकियां कमा सकते हैं, मगर हम अपना वक्त जाया किए जा रहे हैं। ये एक एक सांस कीमती है, यकीन करें जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा ना, वो तमन्ना करेगा कि ए अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, एक बार सुभान अल्लाह कह लूं, एक बार दो रकत नमाज पढ़ लूं, एक बार कलमा पाक पढ़ लूं, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज मौका है ना, जितनी नेकियां करनी है कर ले, जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? एक मिनट पूरा नहीं लगा, ना पसीना बहा, ना हल चलाया है, ना बीज डाला, ना खाद डाली, ना पानी डाला, कुछ नहीं किया, बैठे हुए सारे, मगर सुभान अल्लाह बैठे बैठे चंद सेकंड में पता है आपने क्या हासिल कर लिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख लगा दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख लग जाता है, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख लग जाता है, हैं? सबसे अफजल जिक्र पता है हदीस में किसको कहा गया? अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं? मगर हम कितने लोग हैं जो दिन में कलमा पढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करूं कि कौन कौन चाहता है मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा पाक? माशाल्लाह, तो सब चाहते हैं मरते वक्त हमारी जबान पर कलमा पाक हो, ठीक है। अब एक सवाल करूंगा जिस पर हाथ नहीं उठाना है, मुझे ये जवाब दें कि आज पूरे दिन में किस किस ने कलमा पढ़ा है? पूरे हाथ नहीं उठाए, अपने आप को जवाब दें, पूरे हफ्ते में किस किस ने कितनी बार कलमा पढ़ा है? पूरे महीने में कितनी बार कलमा पढ़ा है? हमें महीनों गुजर जाते हैं, हम कलमा नहीं पढ़ते। तमन्ना क्या है? मरते वक्त कलमा नसीब हो। जिंदगी में पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे ऐसा ना करो भाई, रोज अपनी जबान को कलमे का आदि बनाए ना, ताकि आखिरी वक्त जब जबानें भारी हो जाए तो उस वक्त भी हमारी जबान पर कलमा जारी हो जाए। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह रोज कलमा पाक की भी तस्बीह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जिक्र व दुरूद से जबान तर रखें, फजूल बातों से बचाएं अपने आप को। अल्लाह मुझे भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बा आवाज बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो मेरा मौजू है ना, वो बड़ा अहम मौजू है। आजकल दुनिया में एक बड़ी डिबेट हो रही है, बहस हो रही है कि जनाब हमारे हुकूक क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं, पाकिस्तानी हैं तो हमारे शहरियों के हुकूक क्या हैं, औरतों के हुकूक क्या हैं, बच्चों के हुकूक क्या हैं, ठीक है। हर कोई अपने हुकूक पर बात कर रहा है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि उम्मती होने की हैसियत से हमारे आका अलैहिस्सलाम के हम पर हुकूक क्या हैं? क्या हमें मालूम है? हाँ, उलमा ने इसको तहरीर किया किताबों में, द राइट्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉन हिज उम्मा, उम्मत पर नबी पाक के क्या हुकूक हैं? हमें तो पता ही नहीं, हमें अपने हुकूक की फिक्र लगी हुई है। जिस आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, जिनके उम्मती हैं, और उम्मती होने पर फख्र भी होना चाहिए, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती हैं, इतनी बड़ी नेमत हमें मिली है, मगर क्या ये पता है कि नबी पाक के हम पर हुकूक क्या है? तो आज मैं इंशाल्लाह काजी इयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शिफा शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आठ हुकूक लिखे हैं, कि ये आठ हुकूक हैं जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर उम्मत पर। अब ए उम्मतियों की हमें हुकूक, पहले तो हुकूक पता होने चाहिए ना, फिर अमल करेंगे कि हम उसको पूरा करते भी हैं कि नहीं। तो आज ये आठ हुकूक आपने सुनने हैं, तवज्जो देंगे तो आप सुन पाएंगे, और कोशिश करूंगा कि हर हक पर ज़्यादा बात तो नहीं कर सकूंगा वरना बयान बहुत लंबा हो जाएगा, मगर मुख्तसरन एक समरी आपको बयान कर दूँ कि ये हम पर हक है नबी पाक अलैहिस्सलाम। आका कितना हमारा ख्याल रखते थे पता है ना, हैं? रातों को उठ उठ कर रोया करते थे, रातें जाग जाग कर हमारे लिए दुआएं किया करते थे। बल्कि जब दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो पता है प्यारे आका ने उस वक्त क्या कहा था? उस वक्त भी अपनी उम्मत को याद किया था। सलातो सलाम में शेर पढ़ते हो ना, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, रातों को हमें याद करते रहे, मेराज की शब हमें ना भूले। बल्कि सहाबा फरमाते जब नबी पाक को कब्रे अनवर में उतारा जा रहा था ना, उस वक्त भी प्यारे आका के लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही थी, और मेरे आका उस वक्त भी उम्मत को याद फरमा रहे थे। बल्कि सैयद आला हजरत ने तो और कमाल की बात लिखी है, बड़ी गहरी बात है, ज़रा गौर से सुनना। आला हजरत फरमाते हैं कि नबी पाक आज भी अपनी उम्मत को अपनी कब्र में याद फरमा रहे हैं, उम्मती उम्मती पुकार रहे हैं। अच्छा, अब आला हजरत कहते हैं कभी कभी कान बजते हैं, आपको महसूस हुआ होगा कभी कभी, आप कहते हैं मुझे कोई आवाज़ आई है, अगला कहता है नहीं भाई कोई आवाज़ नहीं, आपके ऐसे ही कान बज रहे होंगे। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं जब भी तुम्हें ऐसा महसूस होना कि तुम्हारे कानों में किसी की आवाज़ आई है, कान बजना जिसको कहते हैं, फौरन दुरूद पाक पढ़ लो, क्योंकि ये वही आवाज़ है जो नबी पाक की आवाज़ मुबारक तुम्हारी रूह से टकराई है। हाय हाय, मेरे आका आज भी उम्मत को याद फरमा रहे हैं, और उम्मती को मालूम है कि नबी पाक के क्या हुकूक हैं, हमें हुकूक ही मालूम नहीं है, हम तो उस पर अमल कब करेंगे। तो आज पहले गौर से सुनिए, हैं 8 हुकूक हैं, पहले मैं 8 हुकूक की लिस्ट बयान कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कुछ बातें एक एक हक पर हम करते हैं। आप फरमाते हैं काजी इयाज़ ने लिखा, पहला हक रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ईमान बिर रसूल, दूसरा हक इत्तिबाए सुन्नत रसूल, तीसरा हक इताअत रसूल, चौथा हक मोहब्बत रसूल, पांचवा हक ताज़ीम रसूल, छठा हक मदह रसूल, सातवां हक दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना, और आठवां हक है कि नबी पाक के रोज़े की ज़ियारत को जाना। हाँ, अब ये 8 हुकूक हैं, हम गौर करें कि हम इस पर कितना पूरा उतर रहे हैं। पहला हक वो क्या है, ईमान बिर रसूल। हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, उनको अल्लाह का आखिरी नबी मानना, ये हमारे ईमान की जान। ईमान कंप्लीट ही नहीं हो सकता ना, अल्लाह के अल्लाह अल्लाह करने वाले तो बहुत सारे मज़ाहिब हैं, अल्लाह को एक मानने वाले भी बहुत सारे मज़हब हैं, मगर जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया जाए, उन्हें अल्लाह का आखिरी नबी ना माना जाए, हैं, जब तक ईमान पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। आला हज़रत कहते हैं ना, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अच्छा, लेकिन एक और बात, ईमान वाले तो हम हो गए, मगर कभी हमने सोचा कि ये ईमान जो है हमें किसी मुश्किल से मिला, बिन मांगे मिला, विदाउट एनी एफर्ट, बगैर किसी कोशिश के मिला। हम तो मुसलमान घराने में पैदा हो गए, कितनी बड़ी हम पर मेहरबानी हो गई। कभी सोचा हमने कि सहाबा इकराम कैसे ईमान लाए, मारा जाता था, तपती रेत पर लिटाया जाता था, जलते कोयलों पर लिटाया जाता था, मगर वो उस वक्त भी अल्लाह का नाम लेते थे, ईमान से फिरते नहीं थे। हमें तो किसी को नहीं मारा गया, ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है, कभी सोचा आपने? मैंने और आपने अल्लाह से दुआ नहीं की थी अल्लाह मुसलमान घराने में पैदा कीजिए। भाई मैं और आप भी तो किसी और नबी की उम्मती बन सकते थे, या माद अल्लाह किसी गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हो सकते थे। अल्लाह ने कितनी बड़ी मेहरबानी की कि बगैर मांगे उम्मती भी बनाया, तो उसका उम्मती बनाया जिसका उम्मती बनने की तमन्ना अंबिया किया करते थे, हैं, सबसे आखिरी नबी का उम्मती बना दिया, ये कितना बड़ा एहसान है। तो इसकी कदर नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल नहीं होना चाहिए। पता है मेरे और आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है, हैं, सबसे कीमती चीज जो एक मुसलमान के पास होती है वो उसका ईमान है। हमें हमारा कीमती मोबाइल हो तो उसकी फिक्र होती है, मोटरसाइकिल नई लें तो उसकी फिक्र होती है, गाड़ी खरीद लें तो उसकी टेंशन, सोना घर में है तो उसकी फिक्र, दुनिया के माल और दौलत की टेंशन होती है, हिफाजत की फिक्र होती है। हम में से कौन है जिसको ईमान की हिफाजत की फिक्र है? आपको पता है मेरे आका क्या दुआ फरमाया करते हैं? अल्लाह के हबीब वो हैं जिनके सदके हमें ईमान मिला है, मगर आपकी दुआ हुआ करती, या मुकल्लिबल कुलूब थब्बित कल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। हैं, कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब कह रहे हैं। क्यों? ये मेरी और आपकी तालीमात है कि अपने ईमान की फिक्र करो, अपनी दुआओं में ईमान को, ईमान की हिफाजत को शामिल करो। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो वलियों के सरदार हैं, आप कहते हैं, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है, अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाए। इतनी फिक्र वलियों के सरदार को। हम में से कौन है जो दुआ करता है कि या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रहे, मेरा ईमान कहीं छिन ना जाए? कभी टेंशन हुई आपको? और आपको पता है इस वक्त बाकायदा साजिश हो रही है कि किसी तरह हमारा ईमान छीन लिया जाए। क्योंकि देखिए, शैतान का अल्टीमेट गोल क्या है, शैतान का सबसे बड़ा मकसद क्या है? शैतान ने जहन्नम में जाना है, उसे पता है, वो ये चाहता है कि जब मैं जहन्नम में अकेला क्यों जाऊं, मैं इन मुसलमानों का ईमान छीनकर इनको भी बेईमान करके अपने साथ जहन्नम में ले जाऊं। शैतान चैन से नहीं बैठता। अब क्या क्या कैसे कैसे ईमान जा सकता है? बाज लोग ये समझते हैं भाई मैं मुसलमान हूं मुझे क्या टेंशन है, अब तो मैं मुसलमान ही मरूंगा। नहीं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। जब गैर मुस्लिम मुसलमान हो सकता है तो मुसलमान भी दायरा इस्लाम से खारिज हो सकता है, उसको अपने ईमान को बचाना होगा। कुरान कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और मत मरना मगर मुसलमान, यानी ईमान सलामत लिए बगैर मत मर जाना। इसका मतलब क्या हुआ? ऐ ईमान वालों, अल्लाह ईमान वालों से बात फरमा रहा है ना कि ईमान वालों, ईमान लेकर कब्र में जाना। तो अगर ऐसा होता कि हर ईमान वाला ईमान लेकर ही कब्र में जाएगा तो अल्लाह ये फरमाता ही ना कुरान में। ये फरमाना बता रहा है, इसको बचाना है, इसको संभालना है, और मरने के मरते वक्त ईमान लेकर कब्र में जाना है। एक बड़ी मशहूर हदीस है जो तकरीबन आप सबको याद होगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये तो याद है ना। लेकिन एक और हदीस है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मों पर है। खात्मा ईमान वाला है ना, तो आमाल है। मैं हज भी करूं, उम्रे भी करूं, रोजे भी रखूं, सदका भी दूं, ज़कात भी दूं, सब कुछ कर लिया किसी ने, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ ना तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब जीरो हो जाएगा। ईमान है तो सारे आमाल हैं, तो ईमान बचाना है। और ईमान कैसे छिन सकता है, इसकी बहुत सारी तफसील है। ज़रा मेरा मौजू सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। हैं ऐसी ऐसी रिवायतें मिलती हैं, ऐसे ऐसे उलमा के अकवाल मिलते हैं कि एक ईमान छिनने की वजह बुरी सोहबत है, कि इंसान गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, मुसलसल गुनाह करता है। रिवायतों में मजमून मिलता है, जब बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लग जाता है, तौबा नहीं करता, दूसरा गुनाह करता है, फिर सिया नुक्ता लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर सिया नुक्ता लग जाता है, एक वक्त आता है पूरा दिल ही काला हो जाता है। अब उसके दिल पर कोई हिदायत की बात असर नहीं करती। आज ऐसे कई लोग हैं जिनको आप नमाज के लिए बुलाएं, वो बुरा भला कहेंगे आपको, मस्जिद में दिल नहीं लगता, इज्तिमा में दिल नहीं लगता, जब भी दीन की बात करो वो बेजार हो जाते हैं। चेक कर लो कहीं दिल सिया तो नहीं हो गया, क्योंकि जिसका दिल सिया हो गया ना, अब उसका ईमान छीनना शैतान के लिए बड़ा आसान हो गया है। तो गुनाहों की कसरत ये ईमान छीनने का एक सबब है। शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना बदकारियां करने वाले, माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पर जुल्म करने वाले, चोरी चकारी करने वाले, डकैतियां मारने वाले, खुदा के वास्ते ये जो बेहयाइयों का बाजार मोबाइल फोन के बाद गर्म हो गया है, सारी सारी रात मोबाइल पर बैठ कर न जाने नौजवान क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, ना करो ये। एक वक्त आता है कि इतना गुनाह का बंदा आदी हो जाता है कि फिर ईमान ही उससे छीन लिया जाता है। ईमान नहीं तो कुछ नहीं। खुदा के वास्ते हमें तौबा करनी चाहिए, गुनाह हो जाए फौरन तौबा करें, फौरन अल्लाह से माफी मांगे ताकि दिल साफ हो जाया करे। दूसरा सबब ईमान छिन जाने का, वो शैतान ने पता है क्या प्लानिंग की है, कुफरिया कलिमात अलग अलग बातों में दाखिल कर दिए गए हैं, कॉमेडी के अंदर, चुटकुलों के अंदर। आजकल छोटे छोटे क्लिप आ रहे हैं ड्रामों के, फिल्मों के, कॉमेडी के, जिसमें माद अल्लाह कभी हंसाने के लिए अल्लाह का, फरिश्तों का, जन्नत का, दोजख का मजाक उड़ाया जा रहा है, और हमारे मुसलमान हम मजे ले लेके सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि इन कलिमात की वजह से उस कॉमेडियन के तो ईमान का पता नहीं क्या होगा, अगर वो भी मुसलमान है तो उसे भी सोचना चाहिए, मगर हम मुसलमानों को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। फिल्मी गानों के अंदर ऐसे अशार डाल दिए पूजा करने के, सजदा करने के, माद अल्लाह अल्लाह को जालिम कहा जा रहा है फिल्मी गानों में, और हमारा नौजवान बहुत मजे ले लेके गाने सुन रहे हैं। ये सारी प्लानिंग्स हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों के दिल से इनका ईमान छीन लिया जाए। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले समझाया था, काश ये बात समझ आ जाए कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यहां चोरी रखवाल बन गए हैं। हाँ, अब देखो ये बात कैसे समझ आ रही है कि आजकल सोशल मीडिया आया ना, तो तरह तरह से लोग दीन सिखाने वाले आ गए। कोई कुरान की तशरीह कर रहा है, कोई हदीस समझा रहा है, कोई अपने तरीके से दीन सिखा रहा है, और हमारा नौजवान सबको सुन रहा है, हैं? रखवाला समझ रहा है उसे, वो रखवाला नहीं है, वो चोर है, तुम्हारा ईमान छीनने आया है, कोई सहाबा से दूर करने आया है, कोई अहले बैत से दूर करने आया है, कोई औलिया से तुम्हें दूर करने आया है, कोई उलमा से दूर करने आया है। ये क्या है? देखो, याद रखिए, कभी भी डायरेक्ट छतरी गिरती है,
पहले पिलर गिराए जाते हैं, बुनियादें गिराई जाती है, फिर छत गिरती है। वो चाहते ये हैं कि आपका ईमान छीन लें, मगर डायरेक्ट अगर आपको कहेंगे कि भाई काफिर हो जाओ, ईमान छोड़ दो, अल्लाह के मुनकिर हो जाओ, तो आपको लड़ने लग जाएंगे। तो वो आपकी बुनियादें निकाल रहे हैं, कहते हैं उलमा से बात ना करो, उलमा की कोई ज़रूरत नहीं है, औलिया की कोई ज़रूरत नहीं है, सहाबा से कोई मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। वो आपके दिल के अंदर इन तमाम मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ मवाद डाल रहे हैं कि एक एक करके आप सबको छोड़ दें, फिर ईमान की छत ही गिर जाएगी। काश ये बात समझ आ जाए।
दीन इतना मजलूम हो गया कि जिसकी मर्जी दीन सिखाए और हम सोशल मीडिया पे उसकी बातें सुनते रहे और सुन के कंफ्यूज भी होते रहे, क्यों सुननी है? ये प्लानिंग है खुदा के वास्ते, समझिए, ये आपके ईमान को छीनने की प्लानिंग है। जब आप दुनिया का हर काम उस काम के एक्सपर्ट से सीखते हैं, तो फिर दीन किसी सही आलिम दीन से, आशिक रसूल मुफ्ती से क्यों नहीं सीखते कि नहीं जनाब, ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत करने वाला और सर्टिफाइड आलिम दीन है, इसने बाकायदा दीन सीखा है, मैं इससे दीन सीखूंगा। हमें तो बात भी उसकी सुननी है जिसकी जबान से अल्लाह रसूल की मोहब्बत छलकती हो, अहले बैत अतहार का प्यार छलकता हो, सहाबा की गुलामी छलकती हो, औलिया की मोहब्बत हमें मिलती हो, हमें उसका दामन थामना है। नहीं नहीं, हमें वो नहीं चाहिए जिसकी जबान में बेअदबी हो, जो सहाबा और अहले बैत और औलिया के बारे में गुस्ताखी करता हो, मगर हम कहते जनाब बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है, बात तो कुरान की कर रहा है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ईमान बिर रसूल, ये हक है नबी पाक का उम्मत पर कि हम ईमान पर साबित कदम रहें और ईमान के डाकुओं से बचते रहें। तो आज हम सब ने ये समझना होगा कि अगर अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अच्छी सोहबत में रहना है, उलमा की सोहबत में रहना है, उलमाए हक की सोहबत में रहना है। आज के इस पुरफितन दौर में अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को, यह ऐसा साहिबान है कि अगर इस साहिबान के अंदर हम रहते हैं तो हमें लगता है कि जनाब ईमान भी महफूज है, अकीदा भी महफूज है। अपने बच्चों को भी इस माहौल में रखो, क्योंकि हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। कहीं से कोई सहाबा की बात करता है, अहले बैत की, उसके अंदर दुश्मनी की बू नजर आती है। कोई अहले बैत की बात करता है तो लगता है जनाब इसके अंदर सहाबा के खिलाफ इसके जहन में बातें हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सहाबा और अहले बैत, ये दोनों हमारी आंखें हैं, ये हमारी आंखों का नूर है। अरे अहले सुन्नत, कितना प्यारा तुम्हें अकीदा अल्लाह करीम ने अता फरमाया है। आला हजरत कहते हैं ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अरे हमारे तारे भी बड़े प्यारे हैं, हमारी कश्ती भी बड़ी प्यारी है। सहाबा क्या है? उम्मत के लिए तारे हैं। आका फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिन है, जिसकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। और आका फरमाते मेरी उम्मत के लिए मेरी आल कश्ती नूह की मानिन है, जो इसमें सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमें सहाबा से भी प्यार है, अहले बैत से भी प्यार है, और इंशाल्लाह अपना बेड़ा। ये हो गया पहला हक, ईमान को मजबूती से थामना है, ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है, बुरे दोस्तों से बचना है, बुरी सोहबतों से बचना है, गुनाहों वाली जिंदगी से बचना है और बद मजहबों से बचना है, ताकि मेरा ईमान सलामत लेकर मैं कब्र में जाऊं। क्योंकि ईमान सलामत लेकर गया ना, फिर कोई गम नहीं है। जब आका कब्र में आएंगे ना इंशाल्लाह, आशिक रसूल की कब्र में नबी पाक आएंगे, तो पता है क्या होगा? मेरे आला हजरत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हाँ, जब आका ने कब्र में आना, फिर तो कयामत तक नूरुन अला नूर हो जाना है। ईमान लेकर जाएंगे, फिर तो नबी पाक की गुलामी इंशाल्लाह बेड़ा पार है। अब आते दूसरा हक, नबी पाक अलैहिस्सलाम का इस उम्मत पर दूसरा हक, जो काजी इयाज ने शिफा शरीफ में लिखा, वो ये है कि हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबाए सुन्नत रसूल, सुन्नत को फॉलो करना है, सुन्नत पर अमल करना है। आजकल एक और बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, सुन्नत पर अमल करना अब ऐसा हो गया है कि लोग आकर उलमाए किराम से पूछते हैं, हजरत सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं है ना, वाजिब तो नहीं है ना। यानी जहन ये बना दिया गया है कि सुन्नत पर अमल करने की क्या जरूरत है, सुन्नत है तो छोड़ दो। अरे अल्लाह के बंदो, सुन्नत है किसकी? जिसका उम्मती हूं, जिसका कलमा पड़ा है, उसके तरीके पर अमल नहीं करूंगा तो किस पर अमल करूंगा? हैं, नबी पाक पता क्या फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। काना माया फिल जन्ना, यानी ये कौन सा रास्ता है? जन्नत में
जाने वाला रास्ता। और एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, फमन रगब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं, आका अपने आप से दूर फरमा रहे हैं। अब एक रास्ता वो है जिसमें आका जन्नत में साथ ले जाएंगे, वो कौन सा रास्ता है? सुन्नत का रास्ता। एक रास्ता वो है जिसमें आका फरमाते जो सुन्नत से मुंह मोड़े मेरा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब बताओ कौन सा रास्ता चाहिए, जन्नत वाला या नबी पाक से दूरी वाला? हमें तो जन्नत जाना है ना, वो भी नबी पाक के साथ जाना है। तो अब हम गौर कर ले, इतना बड़ा मजमा है, कितनी सुन्नतों पर अमल है। एक और अजीब बात बताऊं, टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने एक बार एक प्रैक्टिकल किया था, एक मजमा बैठा था, मैंने कहा जरा चले बारी बारी सुन्नतें बताना है, तो लोगों ने खड़े होकर सुन्नतें बताना शुरू की। अब मैं आपसे पूछता नहीं हूं, मगर मुझे पता है आपने जवाब क्या देना है। अगर मैं इधर से शुरू करूं ना, उलमा को छोड़ दें, आवाम से मैं बात करूंगा, बताइए सुन्नतें कौन कौन सी याद हैं? तो कोई कहेगा भाई सीधे हाथ से पानी पीना सुन्नत है, बैठकर पानी पीना सुन्नत है, सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, इमामा पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, तेल लगाना सुन्नत है। ठीक है, 8, 10, 12, 15 सुन्नतों के बाद साड़ी बस हो जाएगी। हमें पता है सुन्नतें कौन सी याद हैं? हमें सरापे की सुन्नतें याद हैं, लिबास की सुन्नतें याद हैं। अच्छी बात है, अमल करना है इस पर, मगर सच बोलना सुन्नत है ये पता है? नरमी करना सुन्नत है ये पता है? पड़ोसी के हुकूक पूरे अदा करना है ये सुन्नत है? कर्जा वक्त पर लौटाना है ये सुन्नत है? वादा पूरा करना है ये सुन्नत है? इन सुन्नतों पर कौन अमल करेगा? बल्कि मैं सच्ची बात बताऊं, अब जरा गहरी बात कह रहा हूं, अपनों से कह रहा हूं, जितने इमामे वाले और दाढ़ी वाले ना बिलखसूस, मैं उनसे कह रहा हूं कि जिन्होंने ये दाढ़ी रखी है, इमामा पहना, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, मगर हम लोगों को किरदार की सुन्नत ज्यादा अमल करनी चाहिए, वरना लोग मजहबी लोगों से दूर होते हैं कि यार दाढ़ी रखकर झूठ बोल रहा है ये जनाब, दीनी हुलिया अपनाया तो वक्त पे पैसा तो देता नहीं है, वादे तो पूरे करता नहीं है, पड़ोसी उससे सारे परेशान है, माँ बाप के हक पूरे नहीं करता, तो ये सुन्नतें नहीं है। तो किरदार की सुन्नतें अपनाइए, लिबास की भी अपनाइए, किरदार की भी अपनाइए, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह, अगर उनकी सुन्नतों पर अमल करना है तो फिर सारी सुन्नतों पर अमल करें ना। और इंशाल्लाह जब जिस दिन आपने किरदार की सुन्नतों पर अमल करना शुरू किया ना, फिर देखिए दीन का काम करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो नबी पाक का जो दूसरा हक है वो क्या है? इत्तिबाए सुन्नत रसूल। सहाबा तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते थे कि जिन सुन्नतों पर अमल करने का हुक्म भी नहीं था, मगर सहाबा उस पर भी अमल करते थे, ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर करके अमल करते थे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि आपने अपनी प्यारी साहबजादी बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला से पूछा कि ये तो बताओ कि नबी पाक की वफात किस दिन हुई थी, प्यारे आका के कफन में कितने कपड़े थे? अल्लाहु अकबर, यानी तमन्ना ये थी कि जिंदगी तो नबी पाक के तरीके पर गुजारी है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा मरने का अंदाज भी, दुनिया से पर्दा करने का अंदाज भी वही हो जो नबी पाक का अंदाज था। हर सुन्नत पर अमल करना है, और हम हैं कि जिस सुन्नत के बारे में नबी पाक फरमाया उस पर भी अमल नहीं करते। और करें, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, आका फरमाते धोखा देने वाला हम में से नहीं। मगर यहां चला उल्टा काम चल रहा है, हर दूसरा आदमी धोखा दे रहा है। तो सुन्नतों पर अमल करना है, मुसलमानों की खैर खाई करनी है, तो इत्तिबाए सुन्नत रसूल, जब भी पता चल जाए ना नबी पाक का तरीका है। अच्छा, कुछ सुन्नतें तो ऐसी हैं जिसमें कुछ ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ती है। पानी पीना है, अब मैं उल्टे हाथ से पीऊँ सीधे हाथ से पीऊँ, टाइम उतना ही लगना है, खड़े होकर पीऊँ या बैठ के पीऊँ टाइम उतना ही लगना है। लेकिन अगर अदा करूंगा तो किसकी अदा करूंगा? किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। तो आका की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह नियत करें कि नबी पाक का जो हक है उम्मत पर कि उनकी सुन्नत पर अमल किया जाए, हम सुन्नतों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक और बात, अब एक प्रॉब्लम यह है, अफसोस भी होता है कि आजकल का जो मॉडर्न नौजवान है ना, कि आज मुसलमान नौजवान को देखकर ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि यार मुसलमान है कि नहीं है। न चेहरे पर कोई सुन्नत है, न लिबास की कोई सुन्नत है, न बातों में कोई सुन्नत नजर आ रही है। अजीब गरीब अंदाज है, अजीब अंदाज है, पता ही नहीं चलता मुसलमान है कि, जब तक अपना नाम ना बताए पता नहीं चलता कि मुसलमान है कि नहीं। अब ये कैसा उम्मती है जिसको तारुफ करवाना पड़ता है कि मैं मुसलमान हूं, नाम बताता है मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि नाम से पता चला मुसलमान है, बाकी किसी चीज से मुसलमान नहीं नजर आ रहा, न बातों में सुभान अल्लाह है, माशा अल्लाह है, अस्सलाम वालेकुम कुछ भी नहीं है, न कारोबार में है, न घर में है, न अपने सरापे में है। ऐसा ना करो, सुन्नतों पर ऐसी अमल करो कि मैं लाख बंदों के दरमियान खड़ा हूं, मुझे दूर से देखकर पता चल जाए कि किसका गुलाम जा रहा है, किसका उम्मती जा रहा है। शायर कहते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अच्छा, तीसरा हक क्या है? मैं थोड़ा सा तेज चलता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुकूक जो बयान हुए उनमें से काजी इयाज लिखते हैं कि तीसरा हक है इताअत रसूल, आका जो फरमाए उस पर अमल करना है, फॉलो करना है, आपकी कमांडमेंट्स, आपके ऑर्डर्स। नबी पाक ने जिस चीज से रोका रुक जाए, जिसका हुक्म दिया वो काम करें। मगर आज क्या हम ऐसा कर रहे हैं? झूठ बोलने वाले से नबी पाक कितने नाराज होते हैं, मगर आज मुसलमान झूठ बोल रहा है। धोखा देने वाले को फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला हम में से नहीं, मगर आज मिलावट करके धोखा दी जा रही, झूठ बोल के धोखा दिया जा रहा है। नबी पाक ने जिस चीज से फरमाया काम करें, जिससे रोका उससे रुक जाए। हम अपने बॉस की बात मानते हैं, अपनी बीवी की बात मानते हैं, अपने रिश्तेदारों की बात मानते हैं, बच्चे जिद करें उनकी बात मानते हैं, मगर जिस नबी का कलमा पढ़ा है उनकी बातें नहीं मानोगे, उनके फरामीन पर अमल नहीं करेंगे। सहाबाए किराम कैसे अमल करते थे, कैसे कैसे वाकया थे, बल्कि कुरान क्या कहता है, सुनो, नबी पाक की बात मानना एक्चुअली पता क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान कहता है हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। जहां अल्लाह का हुक्म मानने की बात हो रही है, वह नबी पाक के हुक्म मानने की बात हो रही है। एक जगह क्या खूब फरमाया कुरान में, अल्लाह फरमाते मन युतिउर रसूल फकत अता अल्लाह, कि जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। आला हजरत का एक शेर बाज़ औक़ात कुछ लोगों को समझ नहीं आता, आज ज्यादा सही समझ आएगा। ये कुरान की आयत सुन ली ना, तर्जमा सुन लिया, सुनो मेरे रजा क्या कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर है? क्या कहा कुरान ने, मैं युतिउर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। आला हजरत कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अरे अल्लाह के हबीब राजी नहीं है तो फिर रब भी राजी ना होगा, और अगर ये राजी हो गए तो इंशाल्लाह रब भी राजी हो जाएगा। तो हमने नबी पाक का हुक्म मानना है। फिर अगला हक बताया काजी इयाज ने, मोहब्बत रसूल। हाँ, नबी पाक से मोहब्बत। अच्छा, नारा तो हम सबका है, अभी मैं नारा लगाऊंगा आप सब बड़ा अच्छा जवाब देंगे, गुलामी रसूल में ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा प्यारा नारा, और होना भी यही चाहिए कि मौत भी कबूल है। मगर क्या वाकई अगर ये नारा सच्चा है तो जो कहता है मुझे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसे नमाज कबूल क्यों नहीं है? नमाज उसकी कजा हो जाती है, कहता मौत भी कबूल है। आका फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मगर ये मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला फजर में सोया होता है, ना करे ऐसा। आज इज्तिमा में आए हैं, पक्की सच्ची नीयत कर जाओ कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी। तो मोहब्बत रसूल ये हक है नबी पाक का। अच्छा, मोहब्बत तो हम सबको है, अगर मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। लेकिन कितनी होनी चाहिए, पैरामीटर क्या है? हाँ, ये बड़ी अहम बात है। मोहब्बत तो हर मुसलमान के दिल में नबी है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि मुसलमान भी है और नबी पाक से माद अल्लाह मोहब्बत नहीं। मोहब्बत नहीं तो फिर वो मुसलमान ही नहीं है। मगर लेवल ऑफ लव, मोहब्बत का कितना, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए? हाँ, ये भी नबी पाक ने बयान फरमाया, फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुन अहब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व الناس اجمعين। आका फरमाते तुम में से उस वक्त तक कोई मुकामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप से, घर बार से, तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अब बताइए कि हमारी नबी पाक से मोहब्बत कितनी है? क्या घर बार से, बीवी बच्चों से, माल से ज्यादा है या कम है? ये समझना है। आज अभी मोहब्बत है, मगर जब हमारे साथ कोई मामला हो, कारोबार में कोई डील आ जाए, पैसे ज्यादा हो, थोड़ा झूठ बोलना है तो बंदा कहता चलो यार, सारा मोहल्ला ही, सारी मार्केट झूठ बोल रही है, मैं भी थोड़े झूठ बोल के डंडी मार के पैसे कमा लूं, फिर किधर गई तुम्हारी मोहब्बत? मोहब्बत तो ये थी कि चाहे माल बढ़कर आता, मनसब बढ़कर आता, हैं, हम ठुकरा देते। आला हजरत ने कहा था ना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं थोड़े पैसों के लिए दीन बेच दूं। आज नेक नमाजी सुन्नतों के पाबंद बंदे को भी कभी कभी हम देखते हैं, उसके घर में जब शादी होती है ना, तो अजीब तमाशा है, ढोल तमाशे, नाच गाने हैं। बंदा कहे यार आपको क्या हो गया, आप तो नमाजी आदमी थे। तो कहते हैं यार क्या करूं, बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। कितने किया तुम्हारा इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल तो कितनी होनी थी, घर बार से भी ज्यादा थी। बच्चों को खुश करने के लिए क्या हम अल्लाह उसके हबीब को नाराज करेंगे? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हक है नबी पाक का कि उनसे मोहब्बत की जाए और सबसे ज्यादा की जाए। और सहाबा इकराम ने ये प्रूफ किया ना, मेरे पास वक्त कम है, वरना कितने वाकयात हैं। कि घर बार से ज्यादा मालो दौलत से ज्यादा सबसे ज्यादा प्यार किया तो नबी पाक से किया। सर कटा दिए मेरे साहबा ने, सिद्दीक अकबर ने अपना पूरा पूरा घर का माल लाकर नबी पाक के कदमों में रख दिया। आका ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, क्या तारीखी जवाब दिया कि हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। ये मोहब्बत थी ना, सब चीजों से ज्यादा प्यार। और आज हमारा हाल यह है कि थोड़े पैसे थोड़ा मामला आ जाए तो बंदा अपने दीन से कंप्रोमाइज करने लग जा रहा है। नहीं मेरे प्यारे इस्लाम भाई, हक है कि मोहब्बत रसूल नबी पाक से मोहब्बत की जाए और सबसे ज्यादा की जाए। इंशाल्लाह जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया जिंदगी का लुत्फ उठाना शुरू कर देंगे और फिर इंशाल्लाह प्यारे आका से मजीद जब मोहब्बत बढ़ती है तो रहमतों का नुज़ूल भी बढ़ जाता है। पांचवा हक नबी पाक का क्या है, ताज़ीम रसूल, रिस्पेक्ट। प्यारे आका से इतनी रिस्पेक्ट करनी है, हाय हाय सहाबा इकराम ऐसे बैठते थे नबी पाक के बारगाह में कि परिंदा सर पर आकर बैठ जाता था, सहाबा इकराम हिलते नहीं थे। आका वजू फरमाते थे, एक एक पानी का कतरा जो है अपने चेहरे पर मल लेते थे, एक एक मुंह मुबारक लेने के लिए आपस में गोया लड़ाई शुरू हो जाती थी कि मैं ले लूं या मैं ले लूं, इतना प्यार। तो हमें भी नबी पाक से, अब नबी पाक बज़ाहरी तौर पर तो हम उनके उनके कदमों में हाजिर नहीं है ना, तो अब नबी पाक की निस्बत वाली चीज़ों से प्यार करना है। आले रसूल से प्यार करें, नबी पाक के तबर्रुकात से प्यार करें, हैं नबी पाक के शहर से प्यार करें। जिस चीज को नबी पाक से निस्बत लग जाए अब उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आला हज़रत लिखते हैं ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हाँ प्यारे आका की खानदान आपकी किसी खसलत किसी भी मम नबी पाक से नस्बत वाली चीज में नक्श बताने वाला या इशारतन किनायतन उनकी तरफ नक्श की नस्बत करने वाला, आपकी शान को छोटी बताने वाला, इस तरह का कोई भी बंदा जो है वो फौरी तौर पे दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो नबी पाक की शान अरफा व आला है। आला हज़रत कहते हैं वो खुदा ने है मरतबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों बका की कसम। तो ताज़ीम रसूल एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक का हम पर हक भी है, हमारे ईमान का तकाजा भी है। अब आगे चलते हैं, अगला हक उलमा ने क्या लिखा, मदह रसूल। हाँ नबी पाक की शान बयान करना, प्यारे आका की नातें पढ़ना, नबी पाक की नातें सुनना, प्यारे आका की शान में गुफ्तगू करना, बयानात करना, बयानात सुनना, ये हक है नबी पाक का। ये जो वसवसे डालते हैं ना कि ये नाथवानी कहां से आ गई, लगता है उन्होंने हदीस की किताबें पढ़ी नहीं है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबाए किराम थे जो नबी पाक की नाते पढ़ा करते थे, बड़े मशहूर शायर हैं हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला, उनके बड़े कलाम हैं। मगर एक शेर आपको चलो आज सुना भी देता हूं, उसका तर्जमा भी बता देता हूं, जिंदगी भर के लिए नातखानी के बारे में कोई वसवसा नहीं डाल सकेगा, इसे याद कर लो। हजरत हसन बिन साबित वो हैं कि नबी पाक मस्जिद नबवी में मिंबर लगाकर हजरत हसन बिन साबित को बिठाया करते, सहाबा के सामने वो नबी पाक की नाते पढ़ा करते और आका दुआ फरमाते, ए अल्लाह रूहुल कुदस के जरिए हसन बिन साबित की मदद फरमा। अल्लाह हू अकबर, नात ख्वां को इज्जत देना, हजरत हसन बिन साबित को मिंबर पर बिठाना, ये तो नबी पाक का तरीका है। और सुभान अल्लाह हजरत हसन बिन साबित का जरा शेर तो सुनो, आप कहते हैं, व अहसन मिनका लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिकत मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन अन्नक कद खुलिकत कमा तशा। उलमा बैठे हैं, अरे इसका तर्जमा तो बड़ो कमाल कर दिया हजरत हसन बिन साबित ने। आप कहते हैं अहसन मिनका लम तरकत आईनी, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। वह अजमल मिनका लम तलिद निसा, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन किसी माँ ने जड़ा ही नहीं है। अरे जरा रुक जाओ रुक जाओ, ये दो लाइनें पढ़ी ना हजरत हसन बिन साबित की हैं, हजरत हसन बिन साबित नबी पाक के सामने ये अशआर पढ़ रहे हैं। और अगर आज उर्दू में कोई शायर ये कहे कि आका जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित की शायरी ही का तर्जुमा लग रहा है। बल्कि सुभान अल्लाह बरेली के ताजदार क्या लिखते हैं, अगली लाइन क्या कही हजरत हसन बिन साबित ने, खुलिकत मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। अरे यही बात तो आला हजरत लिख रहे हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो सुभान अल्लाह नबी पाक को रब ने तमाम آپ اسے پاک پیدا فرمایا. بلکہ سنو حضرت حسان بن ثابت کی اس مبارک شعر کا جو آخری مصرع ہے نا, اس نے تو اور کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ انک قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ خود چاہتے تھے. ہائے ہائے کتنی آگے کی بات فرمائی میرے رضا. یہی تو کہتے ہیں نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتا چلا کہ نعت خوانی کرنا یہ صحابہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے علماء نے نعتیں لکھی, بڑے بڑے شعراء نے نعتیں لکھی اور جھوم کر لکھی. صدیوں پرانے بزرگ ہیں, مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فارسی میں کلام لکھا, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. کہتے ہیں تنم فرسود جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ, دلم پزمرد آوارا زی عشیاں یا رسول اللہ. ارے ذرا غور تو کرو, صدیوں پرانے بزرگ ہیں, ہر شعر میں یا رسول اللہ لکھ رہے ہیں. تو یا رسول اللہ کہنا, نعتے پڑھنا, یہ ولیوں کا طریقہ, یہ صحابہ کا طریقہ, اور انشاءاللہ یہ عاشقان رسول کے نصیبوں میں ہے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. ہاں نعت خوانی میں جو غلط چیزیں آ گئی ہیں علماء اس کی نشاندہی کر رہے ہیں, اور بالکل ٹھیک ہے. نعت خوانی بھی اس کے تقاضوں کے مطابق ادب کے ساتھ پیارے آقا کی شان و شوکت کو شریعت کے تقاضے میں بیان کرنا ہے. میں مشورہ بھی دوں گا کہ علماء جنہوں نے علماء کے کلام لکھے, اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں, خانوادہ اعلیٰ حضرت کے کلام ہیں, اور جتنے علماء اہل سنت کے جو کلام ہیں وہ پڑھا کریں, تو کہ ان اشعار میں شریعت کے ان تقاضوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے, اور جو ادب و شوق والا انداز ہے اس انداز سے نعت خوانی ضرور کرتے رہنا چاہیے. اور علماء کرام بھی ماشاء اللہ نثر کے اندر بھی نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں. تو حق کیا ہے نبی پاک کا؟ کہ ان کی تعریف کی جائے, ان کا ذکر کیا جائے. دنیا کا دستور ہے, آپ کبھی کسی کو چیک کرنا ہو نا, آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ کسی دوست سے ملیں گے کہ اس کو پیار کس سے سب سے زیادہ ہے. ایک بندہ آپ کو ملے گا جو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کا ذکر کرے گا, کوئی ہوتا ہے جو بار بار اپنے والد کا ذکر کرتا ہے, کوئی ہوتا ہے جو بار بار اپنے کسی دوست کا ذکر کرتا ہے. پتہ چل جاتا ہے یار اس کو اس سے بڑا پیار ہے. ہر پانچ دس پندرہ منٹ بعد نا یہ گما پھرا کے اس بندے کی بات ضرور لے آتا ہے. ہونا پتہ ہے کیا چاہیے, میں ہر تھوڑی دیر بعد اپنے نبی کی بات کروں, ہر تھوڑی دیر بعد میں اپنے آقا کا ذکر کروں. میرا دل, میری روح جو ہے وہ نبی پاک کو یاد کرتی رہے, بس پیارے آقا کے کہتے تصور میں زندگی گزرتی رہے. پتا چلے کہ نبی پاک سے دل و جان سے محبت کرتا ہے, جب بیٹھتا ہے پیارے آقا کا ذکر کرتا ہے. اللہ مجھے ایسی مدح سرائے کی توفیق نصیب فرما دے. رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے, رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. ساتواں حق کیا لکھا قاضی ایاز نے؟ کہ درود شریف پڑھا جائے. ہاں یاد رکھیے یہ حق ہے نبی پاک. میں نے بیان کے شروع میں بھی درود پاک پر کافی بات کی ہے. غور کیجئے پورا پورا دن گزر جاتا ہے درود نہیں پڑھتے. حدیث پاک میں آتا ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود پاک اپنے معمولات میں شامل کیجیے, تسبیح رکھا کریں جیب میں, روز کا کوئی عدد بنائیں کہ میں نے 313 بار کم از کم درود پاک پڑھنا ہے, 500 بار پڑھنا ہے, اللہ توفیق دے تو 1000 بار پڑھنا ہے. آپ کو پتہ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے, خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث کا, وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پاک میں؟ واک کرتے ہیں, گاڑی میں جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تسبیح نکالیں, پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کرے کہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہو جائے. اور آٹھواں حق کیا ہے؟ آخری حق سبحان اللہ, کہ پیارے آقا کے روضے کی زیارت کو جائے, مدینے جائے, قبر انور کی زیارت کو جائے. یہ حق ہے نبی پاک کا امتی پر. مگر آج کچھ لوگ تو واقعی مدینے کو بڑا یاد کرتے ہیں, مگر بڑی تعداد وہ ہے کہ جناب ان کو فکر ہی نہیں ہے, دنیا دیکھی مدینہ نہیں دیکھا. پیسے جمع کیوں کر رہے ہیں؟ یورپ جانا ہے. پیسے کیوں جمع کر رہے ہیں؟ فلاں ملک دیکھنا ہے. خدا کی قسم مدینہ نہ دیکھا کچھ بھی نہ دیکھا. میرے آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک ہے, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے ادھر شفاعت کا وعدہ ہے, غلام مدینے نہ جائے تو کہاں جائے. اللہ کرے کہ ایسی مدینے کی تڑپ نصیب ہو جائے کہ بس کہتے ہیں یہی زندگی کی کیفیت ہو کہ اس آس پہ جیتا ہوں, کہہ دے یہ کوئی آ کر, اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے. ارے مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی, جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی یعنی میرے روزے کی ایسا ہے جیسے اس نے میری حیاتی میں میری زیارت کی. آقا فرماتے ہیں مات ابھی احد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ, ان دو حرم میں سے یعنی مکہ مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا قیامت کے دن وہ امن والوں میں اٹھایا جائے گا. مدینے بلا بھی نبی پاک رہے ہیں اور پھر آقا پتہ کیا فرماتے ہیں ادھر ہی رک جاؤ, مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ بلکہ ہو سکے تو ادھر ہی مر جاؤ. حدیث پاک میں فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہائے ہائے کیسا شہر ہے جہاں جاؤ تو شفاعت کا وعدہ ہے, مر جاؤ تو پھر شفاعت کا وعدہ ہے. تیبہ میں مر کے ٹھٹھٹے چلے جاؤ آنکھیں بند, تیبہ میں مر کے ٹھٹھٹے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر کسی کا مدینہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا نا, یہ ذکر مدینہ پر دل بے قرار نہیں ہوتا, اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے, اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے. خدا کی قسم مدینہ وہ ہے, آپ دنیا میں کوئی بھی خوبصورت سے خوبصورت مقام ایک دو بار دیکھ لیں نا. مثال کے طور پہ پاکستان میں لوگ مری جاتے ہیں, سوات جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار میں نے دو بار دیکھ لی اب کہیں اور چلو یار, ہیں ایک شہر دو بار دیکھ لی اب کتنی بار دیکھنا ہے, دل بھر جاتا ہے. مدینہ وہ ہے ہزار بار دیکھو دل نہیں بھرتا, بلکہ سچی بات یہ ہے جتنا دیکھو اتنا دل اور تڑپتا ہے. جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رہا ہے اور جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپ رہا ہے. ہاں شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں, شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, طے نے رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. مدینہ مدینہ ہے خدا کی قسم, جیسا سکون مدینے میں ہے, جیسی راحت مدینے میں ہے, اور کیوں نہ ہو آقا مدینے میں ہے نا, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے, سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ, روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند, امیر اہل سنت نے بڑے پیارا سوال کیا خود ہی جواب دیا. جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند, میرے محبوب کا گھر مدینے میں, میرے آقا مدینے میں ہے نا, میں ادھر نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا. جن کا کلمہ پڑا وہ مدینے میں ہے, جن سے شفاعت لینی ہے وہ مدینے میں ہے, جن سے محبت کرتا ہوں وہ مدینے میں. مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے, ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مریں, ان کے در سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مریں. آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. خدا کی قسم مدینہ مدینہ ہے, اپنی زندگی کا مقصد بنا لو کہ بس مدینے جانا ہے. اب دعا کرتے رہا کرو, اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ میں مدینہ کیسے جاؤں گا, میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو یہ تمہاری بھول ہے. ہاں مدینے پیسے سے جاتے ہوتے نا تو دنیا کے اربوں پتی میں نے دیکھے ہیں, ساری دنیا دیکھی مدینہ نہیں دیکھا. اور میں نے کئی غریب دیکھے ہیں رہنے کو گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا. سچی بات بتا کیا ہے, کہاں کا منصب سب کہاں کی دولت, دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, کہاں کا منصب سب کہاں کی دولت, دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے, جا رہے ہیں. درود پاک پڑھتے رہا کریں, پیسے نہیں نہ گھبراؤ, میرے آقا کرم فرمائیں گے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ہاں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کئی لوگوں کے انتظام ہوتے دیکھے ہیں, کئیوں کو خواب میں مدینے کی زیارت ہو جاتی ہے, کئیوں کو ویسے مدینے بلایا جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, علماء کہتے ہیں کچھ لوگوں کو فیض بلالی ملتا ہے, کچھ لوگوں کو فیض اویسی ملتا ہے. حضرت بلال کو ساتھ رکھ کے نوازا ہے, وہ ویسے کرنی کو نبی پاک نے دور سے نوازا ہے. مدینے نہیں جا رہے اور دل میں تڑپ ہے نا, تو انشاءاللہ نبی پاک یہاں بھی نوازیں گے. وہ آقا سب کے آقا ہے نا, وہ تو سب کے آقا ہے, تو بس تڑپ ہونی چاہیے. پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتے ہیں, تو اللہ بس شوق مدینہ عطا فرمائے. یہ تڑپ رکھو اور مدینے کی تمنا دل میں, حق بھی ہے نبی پاک کا کہ امتی ان کے روزے پہ جائے, اور جن کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے نا بار بار مدینے جایا کرو. اچھا کچھ لوگ بہانے بناتے ہیں, بس یہ ذرا کام ہو جائے, کاروبار سیٹ ہو جائے, بچی کی شادی ہو جائے, یہ فصل کٹ جائے, یہ والا مسئلہ حل ہو جائے, پھر جاؤں گا مدینے. مدینے نہ جانے کے بہانے مت بنایا کرو. سچ بتاؤں مدینے جانے کے بہانے بنایا کرو کہ یار کسی بہانے سے مدینے چلا جاؤ, بس کچھ کچھ معاملہ ہے ابھی مدینے چلا. آپ پریشان ہو نا, آپ مشکل میں ہو, میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, یہ مت سوچو مسئلہ حل ہو جائے گا پھر مدینے جاؤں گا. ارے مسئلہ اٹکا ہوا ہے, جلدی مدینے جاؤ, مسئلے حل ہی وہیں سے ہوتے ہیں. میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. ارے مدینے جاؤ, ساری دنیا کو وہاں سے خیرات مل رہی ہے, انشاءاللہ آپ کی بھی بگڑی بن جائے گی. اللہ کرے کہ بس یہ شوق زندگی کا سب سے بڑا شوق بن جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے بہت مختصر مختصر وقت چونکہ تھوڑا تھا 8 حقوق بیان کیے ہیں, اسے یاد بھی رکھنا ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرے آقا اپنے دامن میں چھپا لے, اپنی شفاعت سے بہرا من فرمائیں. ایسا نہ ہو زندگی نبی پاک کے طریقے سے ایسی دور رہ کے گزارے کہ پیارے آقا ناراض ہو جائیں. انہیں ناراض مت ہونے دینے, وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا, شفاعت بھی مل جائے گی. اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس پرفتن دور میں خدا کی قسم یہ دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت ہے. یہ کبھی دیکھا تھا ہم نے نوجوان مدینے کی یاد میں روئیں گے؟ کوئی لندن, کوئی پیرس, کوئی کہاں کے خواب دیکھتا ہے؟ یہ کمال کی تحریک دعوت اسلامی جو آج کے اس نوجوان کو مدینے کی یاد میں رلاتی ہے, عشق رسول میں رلاتی ہے, سنتوں پر عمل کروا دیتی ہے. تو آپ اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, اس دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.